జై శ్రీ ఓం నమః సిద్ధేభ్య నమో అరహంతాళం నమో సిద్ధాళం నమో ఆయుర్యాళం నమో వజ్రాయాళం నమో లోహే సౌరసాగుణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణీ మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం శోభిత నిజ అనుభూతియుత చిదానంద భగవాన్ సార పదార్థ ఆత్మా సకల పదార్థ నిజ స్వరూప కో పరమ రస జామే భయోపార వందో పరమానందమయ సమయ సార వికార. వేద జ్ఞాన్ కే ఇస్ మహోత్సవ్ కే ప్రసంగ్ మే आचार्य अमृतचंद्र देव विरचित समय सार शास्त्र में जो कलश हैं संवर अधिकार के अंतर्गत उनका अत्यंत सुंदर भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी ने किया है. अपन उसी अनुवाद के आधार से वेद ज्ञान से संबंधित रसास्वादन करेंगे. आज अपन दूसरे कलश का अनुवाद और छंद नंबर तीसरा. एक एक का फर्क इसलिए पड़ जाता है कि पहला छंद उन्होंने जो प्रतिज्ञा वाक्य का बनाया उसे भी एक नंबर दे दिया. वो किसी कलश का अनुवाद नहीं है, वो तो मंगलाचरण जैसा है, प्रतिज्ञा है. तो इसलिए बाद में जो भी कलश आएंगे तो हिंदी में जो नंबर रहेगा संस्कृत में उससे एक कम रहेगा. कायदे से इसका पुनर्संपादन किया जाए तो उसमें स्टार लगा देना चाहिए था बजाय नंबर देने के. खैर, मैं कलश पढ़ूंगा पहले संस्कृत में, उसमें नीचे होगा और आगे पेज पर. हाँ, ये दूसरा कलश अपन पढ़ते हैं. चैद्रूप्यं जड़रूपतां च ददतो कृत्वा विभागं द्वयो अंतर्दारुण दारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोदध्वमाध्यासिता शुद्ध ज्ञान गणौघमेक मधुना संतो द्वितीय च्युता शुद्ध सुछंद अभेदया बाधित भेद विज्ञान सुतीचन आरा अंतर भेद स्वभाव विहार कर जड़ चेतन रूप दुख
तो दिन के उर में उपजो मारो चेतन को कर संग सहारा आत्म को अनुभव करी ते करके
आत्म को अनुभव करके हरखें परखें परमात्म धारा। इसमें कितना भाव भरा है अंदर में परमात्म की धारा। दो अर्थ कर सकते हैं अपन। एक तो परमात्म माने ज्ञायक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसका जो त्रिकालिक धारावाहिक अस्तित्व है कारण शुद्ध पर्याय है, ध्रुव की ध्रुव परिणति, उसका नाम है परमात्म धारा। और वो धारा के लिए ध्रुव के ताले में बंद रहती है, वो ऐसा नहीं है, वो अपने लक्षण में प्रकट रूप रहती है। उपयोग लक्षण वो परमात्म धारा। फिर तीसरा जो अंतर्मुख होकर पर्याय ने अनुभव किया कि मैं ज्ञायक हूं, वो परमात्म धारा। केतन भाई तीन अर्थ अपन कर सकते हैं। देखो मैं इसी में से अर्थ पढ़ता हूँ, अर्थ भी इसमें लिखा है। हाँ हाँ, अभी गुजराती डाल दिया क्या आपने भी? अच्छा। शुद्ध स्वतंत्र एक रूप निराबाध भेद विज्ञान रूप तीक्ष्ण करवत अंदर प्रवेशी में स्वभाव विभाव बने जड़ चैतन्य जुदा जुदा करी नाखे छे। ते भेद विज्ञान जेमना हृदय मां उत्पन्न थयुं छे तेमने शरीर आदि पर वस्तु नो आश्रय रुचतो नथी, तेओ आत्म अनुभव करीने प्रसन्न थाय छे अने परमात्मा नु स्वरूप ओळखे छे। ये काल बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी मस्ती में गाया जाता है। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण धार आरा तीक्षण आरा। जैसे लकड़ी को काटने के लिए जो होता है ना कारपेंटर के पास करवत, हमारे यहाँ आरी कहते हो है। अब इसमें देखो भेद ज्ञान रूपी तीक्ष्ण जो करवत है उसके विशेषण बनाए जो शुद्ध स्वच्छंद अभेद अबाधित। वास्तव में तो ये भेद विज्ञान में अपने को जिस रूप में अनुभव किया गया है, पर से भिन्न चैतन्य स्वभाव को देखा गया है, उसके विशेषण है। शुद्ध कौन है? भगवान आत्मा शुद्ध है तो उसका अनुभव करने वाली पर्याय भी शुद्ध है। ख्याल में आया? इसमें गुजराती में स्वच्छंद का स्वतंत्र किया है, क्योंकि लोक में स्वच्छंद शब्द जो है थोड़ा दूसरे सेंस में भी लिया जाता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, क्या है कि वो भाषा विज्ञान का एक नियम है कि लंबे समय में शब्दों में अर्थ गौरव अर्थ लाघव अर्थ विपर्य ये सब होता है। ख्याल में जैसे भाई अरे भाई भाई शब्द जो है अपने आप में ही एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक हो गया है। हमारे हिंदी भाषी टोन में टोडोमल जी ने तो तीसरे अध्याय के अंत में हे भाई हे भव्य, हमने जो संसार के दुखों का वर्णन किया है सो वैसा ही है कि नहीं इसका विचार कर। कितना वात्सल्य उछलता हुआ संबोधन है, ठीक है। लेकिन अब देश काल के हिसाब से कल्चर के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें। अब वो किसी को अगर भाई कह दो कि भाई आए हैं तो उसकी तो रूह कांप जा रहे। ऐसे स्वच्छंद शब्द है, लेकिन आप देखना निद्रा अधिकार के कल्पों में मुनिराज को भी स्वच्छंद बोला गया। टेकचंद जी का एक विधान है पंच परमेश्वरी विधान, उसमें निरंकुश वे नेत्र इंद्री विषय वश कर आप निरंकुश फिरें, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, निरंकुश हैं। पहले इंद्रियों का अंकुश था, अब वो हट गया, समझ में आया, ऐसा है। ऐसे एक शब्द है मत्त, मत्त शब्द का अर्थ तो वास्तव में उन्मत्त है, मत्त है, नशे में है, पागल है, खरे नशे में है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि निर्जरा अधिकार के कल्पों में सम्यक दृष्टि को मत्त कहा गया। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप में मत्त है, ऐसा है। तो जो ज्ञायक भाव चैतन स्वभाव स्वतंत्र है, शुद्ध है, एक रूप है, निराबाद है, और मैं ऐसा हूँ ऐसा अनुभव करने वाली परिणति, वो भेद विज्ञान स्वरूप है, वो भी शुद्ध स्वच्छंद निराभास अपने को वैसा अनुभव करती। देखिए भेद ज्ञान की भाषा कैसी होनी चाहिए, मैं एकांकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा है समझा था। था बोलना ज्यादा अच्छा है कि है बोलना ज्यादा अच्छा है? उसमें तो था लिखा है लिखा है था लिखा है। इसका अर्थ यह है कि कवि ये घोषणा करना चाहता है कि मैंने पहले समझा था, अब नहीं समझता, मैं तो ज्ञानी बन गया। और किसी किसी भक्त को जिसने उसके अर्थ पर विचार किया हो, वो सोचेगा यार भगवान तो केवल ज्ञानी है, सब जानते हैं, सोचेंगे काय को झूठ बोल रहा है। भले ये विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किसने कर लिया कि ये मेरे नहीं है, मैं एकांकी एकत्व लिए हूँ, ये अनुभव में तो अभी भी देह को ही अपना मान रहा है। तो फिर ये कहते महाराज आज तक मेरे से यही गलती हो रही है, तंधन को साथी समझा है, मैंने आज तक ऐसा समझा है, खैर पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला। अब इस पर ध्यान देना है थोड़ा, मैं इनसे अति भिन्न, अति भिन्न माने 100% द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब तरफ से भिन्न हूँ, अखंड हूँ, निराला हूँ। अच्छा ये मेरे से भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूँ, ये दोनों बातों का मतलब तो एक ही है ना, ये कुछ फर्क है इसमें। देवीलाल जी देवंती भाई, देह मेरे से भिन्न है और मैं देह से भिन्न हूँ, बात तो एक ही हुई, क्या अंतर रहा इसमें? सिद्धांत तो एक ही है, देह और आत्मा की भिन्नता कोई बताया जा रहा है, परंतु देह मेरे से भिन्न है इसमें देह मुख्य हो जाती है। देह की चर्चा है, कैसी है देह, प्रथमानुयोग की शैली में अपन लिखेंगे ना, कैसी है देह कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण मई है, पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, नाम कर्म से रची गई है और चैतन्य से भिन्न है। तो ये किसकी कथा हुई? देह की कथा हुई। ऐसे ध्यान देना, राग को अपने से भिन्न जानना ऐसा नहीं, अपने को राग से भिन्न जानना, समझ में आया, अपने को देह से भिन्न जानना। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, भिन्न तो दोनों है ही है। अरे दोनों भिन्न है तो एक को चुनाव करना है ना, कि मैं कौन हूँ, मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, अपनी तरफ से बात की है। अन्यत्व भावना में भी अपनी तरफ से बात की है, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला, पूरा वेद विज्ञान का सार इसमें उतार करके रख दिया। अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि पूर्वक समता रस का पान करने वाली जो परिणति की धारा चलती है उसका नाम वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान कोई किसी किसी काल में करने योग्य है, किसी किसी काल में भाने योग्य है, कभी कभी विचार करने योग्य है, ऐसा नहीं है। वो तो निरंतर अनुभव में आने वाली परिणति है। अच्छा देखो, लोक में भी ऐसा होता है, सहज होता है। जिस चीज को हम अपना नहीं मानते तो उसके लिए कोई समय निश्चित है। पड़ोसी के मकान को अपना मकान नहीं मानना, तो जब हम अपने मकान में रहें तब नहीं मानना, कि जब उसकी तरफ देखें तब नहीं मानना, कि जब कोर्ट में एफिडेविट दे रहे तब नहीं मानना, कब नहीं मानना, सदा काल। और मजे की बात यह है कि पड़ोसी के मकान को अपना नहीं मानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताओ? जब करना पड़े, व्रत करना पड़े, तप करना पड़े, संयम करना पड़े, ब्रह्मचर्य पालना पड़े, परीक्षा देना पड़े, सात स्वाध्याय करना पड़े, क्या करना पड़ता है? अपना नहीं मानना। नहीं मानने के लिए नहीं मानना पड़ता है, मानने के लिए मानना पड़ता है। बात समझ में आई? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानने के लिए क्या करना पड़ता है? चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना पड़ता है। पढ़ता है ये तो लैंग्वेज स्टाइल है, पढ़ने में कोई माथे बोझा आता हुए कि भजन पढ़ता हुए, ऐसा नहीं है। चर्चा तो बहुत है भैया, ये तो देवनाली का वातावरण तो इस चर्चा से 12 महीने गूंजता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं जैसे कि पहाड़ सिर को उठाना पड़ेगा, शरीर सुखाना पड़ेगा, गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा। अरे भाई, जिस पुरुषार्थ की बात की जा रही है वो ज्ञान आनंदमयी चेतना का विलास है। समझ में आया? ऐसा अनुपम परिणति, उसका नाम भेद विज्ञान। निराभास भेद विज्ञान रूप तीक्षण करवत अंदर प्रवेशी ने स्वभाव विभाव अने जड़ चेतन ने जुदा जुदा करी ना के। भाषा कैसी है कि जुदा जुदा करी ना कैसे, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? जुदा जुदा छे एम जाने छे, अनुभवे छे, एनो नाम जुदा जुदा करी ना कैसे। जानने को भी करना कहते, और आत्मा के समझ लो सीमा में जानने के अलावा और कुछ करना है ही नहीं। हम लोग तो जब वो सोनगढ़ बच्चों के शिविर में जाते थे, हम 3 साल तक तो बाल बच्चों के शिविर में गए जो 7 महीने में लगते थे। आप भी जाते थे उस समय, है ना? और उसमें लघु सिद्धांत प्रवेश का के मंगलाचरण में ये छंद जोड़ दिया था उन्होंने। कौन सा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। ज्ञानात अन्यत करोति किम, जो ज्ञान मई है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही बना हुआ है, वो ज्ञान के अलावा और क्या करे? है जानना कहो अथवा करना कहो, उन दो बातों में कोई अंतर नहीं। स्वाभाविक क्रिया में 72 गाथा में है ना, शायद 71-72 गाथा में, ज्ञान क्रिया स्वभाव भूत होने से उसका निषेध नहीं किया जाता है। निषेध नहीं किया जाता कि आत्मा करता नहीं है ज्ञान क्रिया का, ऐसा नहीं बोला जाता। विकार की क्रिया का करता नहीं है ऐसा बोला जाता। गजब बात। स्वभाव विभाव ने जड़ चेतन ने जुदा जुदा करी ना खेचे। कभी कभी ऐसी भी भाषा आती है, मोक्षाधिकार में है, बंद और आत्मा के बीच में प्रज्ञा छेनी को पटकना, तो बीच में स्पेस ढूंढना, फिर वहां डालना, तो बीच में डालना का क्या अर्थ होता है? अरे बीच में ये तो अलंकारिक भाषा है। ज्ञान उपयोग को ज्ञान स्वभाव में लगा देना, इसका नाम है, इसी का नाम बीच में डाल देना। ख्याल में आया? दो के बीच में भिन्नता है। वो पत्थर का उदाहरण देते ना, शिला में जैसे सांड होती है, फिर वो वहां पे वो छेनी पटकते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान और राग के बीच में संधि है। बीच में मतलब कोई एक आध मिलीमीटर की स्पेस होती हो, पर उसमें कोई दूसरा कलर पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। राग राग रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप है। दो बोल, दो बोल लिए इसमें, स्वभाव विभाव अने जड़ चेतन। देखो भाई, आज सब एक आज सोने के पहले एक 5 मिनट ये प्रयोग करना, एकदम से सो मत जाना, बैठना सैया पर देवीलाल जी, और भेद ज्ञान के स्वरूप का विचार करना या आत्मा के स्वरूप का विचार करना। तो इसमें मुख्यता किससे भिन्न जानने की आती है? एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, मोक्ष से भी भिन्न है, राग से भी भिन्न है। ये सब बातें, राग से भिन्न तो उसमें आता है प्रयोग में, बाकी जो एक समय की पर्याय वगैरह की बातें हैं वो तो जो अखंड एक अभेद आश्रय भूत ज्ञायक भाव है उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए व्याख्या की जाती है। आप प्रयोग में एक समय की पर्याय को देखो और अपने को उससे भिन्न देखो, बात समझ में आती है? जो अनुभव में आते हैं निरंतर वर्णादि अरु रागादि, बस ये है बोल। वेद ज्ञान में अपोजिट पार्टी ये है। ख्याल में आया? मूल तो देह से वेद ज्ञान की बात है। अरे मिट्टी की काया भी महकता चिन्मय भिन्न अति, शुभा शुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान वहां। अपने प्रयोग में अपन कितनी चीजों का विचार कर सकते हैं। मूल तो ये देह है। प्रवचन सार की जो प्रसिद्ध गाथा है पद्य मूला पर समया, उसमें जैसे ना चार देह में असमान जाति मनुष्य पर्याय। ये काया मिट्टी की काया जिसमें हर पल तन में ही तन्मयता हो रही है जीव की, ऐसा लगता है कि देह ही मैं हूँ। 24 घंटे ऐसा देह में अपनापन बरतता है। तो देह के लग रहे हैं चेत रूपम जड़ रूप काम चतद, तो एक चैतन्य स्वरूप को धारण करता है भगवान आत्मा, और रागादि भाव और देह जो है वो जड़ रूप को धारण कर। जड़ और चेतन की भिन्नता ये यही समझ लीजिए भावना बहाने लायक अनुभव करने लायक। रागादि भाव उसमें चले गए, वो जड़ में ही चले। छठवीं गाथा की टीका में तो कितना सुंदर प्रयोग है, पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, पर द्रव्य त्रेण भिन्न उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ज्ञायक भाव। गुरुदेव ने इस पे कमेंट किया, इसमें राग क्यों नहीं लिया, अकेला परद्रव्य क्यों लिया, इसमें राग राग भी साथ में लेना चाहिए। अरे जब परद्रव्य से भिन्न अपने को देखेगा तो राग उत्पन्न होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? तो राग ही उत्पन्न नहीं होगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन समझने समझाने के लिए, निर्णय करने के लिए, अभिप्राय में रागादि विकारी भावों के प्रति कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, एकत्व बुद्धि तोड़ने के लिए ये व्याख्या चलती है, है कि राग असुचि है, विकृत है, आश्रव है। यहां तो दोनों को एक साथ ले लिया, जड़ चेतन ने जुदा जुदा करी नाखे थे। कौन कौन जुदा करता है? ये वेद ज्ञान रूप परिणति ख्याल में आया। ते वेद विज्ञान जेमना हृदय मां उत्पन्न थयू छे, हृदय में होता साहित्य हो गए, काव्य हो गए, तो उसमें भाषा अलंकारिक न आवे तो काव्य कैसा हो। हृदय का अर्थ है परिणति में उत्पन्न, हार्ट में होता है ऐसा नहीं है, मन में होता है, मन तो जड़ चीज है। तेमने शरीर आदि पर वस्तु नो आश्रय रुच तो नथी, गजब है। देखो भाई, जब तक जिसमें अपनापन है तब तक उसकी चिंता माथे पर रहती, उसका अच्छे अच्छे की चिंता, बुरा ना हो जाए उसके भले की चिंता, उसके विकास की चिंता। तीव्र राग होवे तो निरंतर उसका समागम करने की चिंता, आंखों से दूर नहीं कर सकते हैं। जिसको अपना माना, समझ लीजिए फिर सारा जीवन उसमें ही समर्पित हो गया, और जब अपना मानना छूट गया तो उसके साथ में रहना कैसे पोसाएगा फिर। ये भी एक मनोविज्ञान, बहुत कठिन बात नहीं है। लोक में भी जिसको अपना मानना छूट गया, जिस मकान में आप रहते हैं, मान लीजिए आपने दूसरा इससे बढ़िया बड़े मकान का सौदा कर लिया, लेकिन अभी उसको उसका क्या बोलते पजेशन मिलने में 6 महीने की देर है, और ये मकान बेच दिया। अभी रहते तो इसमें हैं, पर उसमें रहना रुचेगा समझ में आया। अभी इसकी क्या चिंता करना, किधर लीकेज होता है, किधर ये होता है, किधर वो होता है। सज्जनता के नाते या ड्यूटी के नाते थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा देवे भले है, लेकिन जो अपनत्व जिस मकान में नहीं है, अभी गया नहीं लेकिन उसमें अपनापन है, तो दिन में 3 चक्कर काटेगा है कि नहीं। कभी कैसा है, ये कितना बन गया, अभी ये काम होना था, ये बाकी है, हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह ये मिट्टी की काया, इसमें चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा एकत्व बुद्धि करता था, तो इसका इसमें ही लीन हो गया। संग रुचने की तो बात क्या कर, इसको ही अपना मानता था, अब उसको अपना मानना छूट गया तो उसका समागम नहीं रुचता है। तेवो आत्मा अनुभव करीने प्रसन्न थाय छे अने परमात्मा नु स्वरूप ओलखे छे। क्या करते हैं ज्ञानी हैं, आत्म को अनुभव करीते हरखे परखे परमात्म धारा, अपने चैतन्य के अतिंद्रिय आनंद को भोगते हैं, उपयोग की स्वच्छता में ज्ञायक को देखते हैं, ख्याल में आया। और ज्ञायक भाव त्रिकाल अखंड ध्रुव प्रवाह रूप है, ऐसा उसमें अपनत्व करके उसका अनुभव करते हैं। गजब बात। गुरुदेव ने आपने ख्याल किया होगा कल का जो व्याख्यान था 181 गाथा का, उसमें एक उपयोग का अर्थ स्वावलंबन करने वाली परिणति निर्मल पर्याय, सामान्य उपयोग नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है कि ये मैं हूँ ऐसा, ये हेतु दिया उसने। तो ज्ञान ज्ञान जे जे योग्य थे सा समझ ते भावा, मेरा है मेरे उसमें समझ लो विकल्प जाल में। कुछ वर्षों बाद जब जो अभी चल रहे हैं परमागम ग्रंथ, तो पांडे राजमल जी की टीका और ये समय साथ कलश, ये दोनों एक साथ यहाँ स्वाध्याय में लेने का विचार है। ज्ञान प्रभाव की रहित छे तेसी शुद्ध छे, ये ज्ञान की शुद्धता। निज परनु स्वरूप बतावे छे तेसी स्वतंत्र छे, वाह ये स्वतंत्रता की परिभाषा है। अपने को पर से भिन्न अनुभव करता है, निज पर का स्वरूप माने क्या। देखो स्वरूप में कितने एंगल से अपन देख सकते, देह का स्वरूप देखना है तो इसमें खून है, इसमें हड्डी है, तो खून में शुगर है, तो खून में वो व्हाइट कण है, रेड कण है, हेमोग्लोबिन है, दुनिया भर की चीजें समझ में आया? ये स्वरूप देखना है। अरे स्वरूप केवल इतना देखना है कि ये मैं नहीं हूँ, बस फाइल खत्म, फाइल क्लोज। इसके आगे कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो स्वतंत्रता इसका नाम है, मैं देह से भिन्न हूँ। एमा कोई पर वस्तु नो मेल नथी, तेसी एक छे नए प्रमाण नी एमा बाधा नथी। देखो अबाधित, नए प्रमाण के बारे में अभी चर्चा करने का ज्यादा समय नहीं है। आप सब तो स्वाध्यायी हैं, जानते होंगे ये जे वस्तु साधक हैं तेई तहा बाधक हैं, बाकी राग देश की दशा की कौन बात। प्रमाण से ऐसा है, नए से ऐसा है, नए का विषय ऐसा है, समझने के लिए प्रारंभिक भूमिका में ये घटनाएं सब बनती हैं ज्ञान में। चैतन्य का अनुभव हुआ तो अरे प्रमाण है निक्षेप को भी तेरहवीं गाथा की टीका में अभूतार्थ कहा गया। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, निक्षेप, प्रमाण इत्यादि सब एक चैतन्य के अनुभव के काल में कोई भी विकल्प प्रमाण नय का खड़ा नहीं होता। उदयती नय शरीर में तिक प्रमाण, उसी का अनुवाद है। ऐसे गजब की चीजें अबाधित में ये लिया है, अबाधित। अगर अगर नए प्रमाण का विकल्प खड़ा हो गया कि मैं द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप हूँ, ऐसा दो पक्ष खड़े हो गए तो अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति की धारा टूट जाएगी। अभी तुम कच्चे हो, जरा अभी नीचे की क्लास में जाओ, वो पक्का कर आओ, फिर इस अनुभव की कक्षा में आना। अरे दुनिया का रिवाज ये, आपकी पसंद का बढ़िया भोजन थाली में रखा होगा, जो भी आप लोगों के हिसाब से इष्ट हो गए, पूरण पुड़ी, सेवंती भाई खीर है, पूरण पुड़ी है और ढोकला है, एक्स वाई जेड। अभी जब तक उसका विकल्प चलेगा आप स्वाद नहीं ले पाओ। जब स्वाद में एकाकार परिणति हुई तो सारे विकल्प टूट जाएंगे। अच्छा है, मीठा है, ऐसा है, वैसा है। सोने की कटोरी में रख के खा रहे खीर तो भी सोने की कटोरी का विकल्प नहीं आए, खीर में ये चीजें डाली हैं ऐसा विकल्प नहीं आए। ये तो पद्धति है, अनुभव करने की पद्धति ही ऐसी है। हाँ, आ भेद विज्ञानी तीक्ष्ण करवत ज्यारे अंदर प्रवेश करे थे त्यारे स्वभाव विभाव नु पृथककरण करी नाखे थे, अने जड़ चेतन नो भेद बता रहे थे। दोनों बोल लिए भाई, जड़ चेतन में, जड़ में मतलब समझ लो मुख्यतया देह की, और स्वभाव विभाव में राग आदि विभाव, राग में सब आ गए। तेती भेद विज्ञानियों की रुचि परद्रव्यो माथी खसी जाय छे। वाह, जैसा रस, रुचि माने सुख बुद्धि, रुचि शब्द की क्या व्याख्या की जाए। परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, रुचि किसको कहना, रुचि यानी जिसमें हमें सुख भाषित होता है, तो सुख भाषित होने का नाम रुचि है। और बार बार उसका स्वाद लेने की इच्छा होना, उसका समागम करने की इच्छा होना, समझ में आया। तो उपयोग बार बार, जैसे बच्चों को क्रिकेट की रुचि होती है तो परीक्षा के दिनों में भी क्रिकेट याद आता है, ये रुचि का लक्षण है। उसको रुचि में आनंद आता है, ये रुचि, क्रिकेट में आनंद आता है, ये रुचि, समझ में आया। और रुचि है ये कैसे पहचाना जाए, कि हर प्रसंग में वो उसी विषय को याद करना चाहता है, ये उसका लक्षण हो गया। तेव धन परिग्रह आदि में रहे तो पण खूब आनंद थी, परम तत्व की परीक्षा करिए आत्मिक रसनो स्वाद ले छे। वाह, आनंद थी, भले ग्रस्त अवस्था में हो गए कदाचित, तो भी भेद ज्ञान परिणति ज्ञानी की निरंतर चलती रहती है। जैसे अपन परदेश में जा रहे हैं, होटल में ठहरे हैं, और एक एक कमरे के एक रात के समय में 5,000 रुपया भी दे रहे हैं, वो भी ज्यादा लगते होंगे है, जितना ऊंचा होटल, तो उसको अपना मान लेते। बोलो अपने घर में है नहीं, होटल में ठहरा है या किसी के यहाँ मेहमान बन के रुका हुआ है, तो भी जहाँ ठहरा है उसमें अपनापन नहीं, और जहाँ अपनापन है वहाँ भी रुक गया, अभी घर में है नहीं। कितना फर्क है अपनेपन में और बाह्य परिणति में, कितना फर्क है। तो उसको भोगना नहीं पड़ता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो है, मेरा घर तो वो है। ऐसी अंदर श्रुत ज्ञान में इस तरह की परिणति निरंतर चलती रहती, उपयोग में भले जो विषय हाजिर होवे वो विषय के सन्मुख उपयोग होता है। ख्याल में आया, टोडर मन जी ने लिखा है विचार तो उपयोग के अधीन है, सातवें अधिकार में, विचार तो उपयोग के अधीन है, जिस दिशा में उपयोग होगा उधर का विचार चलेगा, लेकिन अंदर की जो धारा है, वेद ज्ञान की धारा कहो, अनुभूति कहो, परिणति कहो, ख्याल में आया, उसी के बल पे सम्यक दर्शन टिका रहता है, तो वो धारा उसकी निरंतर अखंड पने चला करती। समय हो गया है अपना, ऐसा वेद ज्ञान रूप परिणमन अपन सबको निरंतर बरते, ऐसी भावना से मैं अभी की बात पूरी करता। पांच मिनट है, चलो चौथा छंद पढ़ते, चौथा पांचवा पाठ करो। जो कब हूँ यह जीव पदार्थ अवसर पाई मिथ्या मिटावे, तो अभी अंतर दर्वित भावे कर्म कलेश प्रवेश न पावे, आत्म साधि अध्यात्म के पर पूरन है पर ब्रह्म कहावे। पांचवा, भेदी मिथ्यात सुवेदी महारस वेद विज्ञान कला जिन पाई, उद्गत रीति पूरी जिन के घर होत निरंतर ज्योति सवाई, श्रीमती मान सुवर्ण समान तिन को न शोभा शुभ पाई, वेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोष है। आया, चलो ग्यारह छंद तो है, ग्यारह तक पढ़ो ये। वेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम क्या होगा ये, फिर बोलो। वेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम होत है, वेद ज्ञान शिव मूल जगत महिमा, वेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति न हो, परम ज्योति पर घट जहाँ, ज्ञान संभर जिन पायो Amen.
जैसे रज सोधा रज सोधी के गर्व काढ़े आवक कनक काढ़ी दाहत दारिये कतक फल नीर करे उज्जल निकारे नारे धी को माथैया मथी काढ़े जैसे माखन को जैसे दूध पीरे चाही जल को जैसे ज्ञान वंत वेद ज्ञान की सकती साभी प्रगति भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने पर नति पर त्याग शोध अनुभव तिथि करी अनुभव अभ्यास सहज संवर पर हाथ आश्रव द्वार निरोधि कर्म जय करी विभाव समभाव भजी निर्विकल्प निज पद गए निर्मल विशोति सासुत सुधीर परम अतीन्द्रिय सुख।
बहुत सुंदर कलश।